हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जैसे तैसे करके वेदांत ने विहा को आखिर साड़ी पहना ही दी थी। उसने ऐसा करके एक लंबी सांस छोड़ी और अपने सीने पर हाथ फेरते हुए विहा के लाल पड़ चुके चेहरे को देखने लगा। विहा की आंखें अभी बंद थीं, जिन्हें देखकर कहीं ना कहीं वेदांत को एहसास हो चुका था कि उसके छूने से विहा को कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा था। वेदांत ने अपने घबराहट से सूखते होठों पर जीभ फेरकर धीरे से कहा, हो गया है, अब तुम अपना मेकअप कर सकती हो और बाल भी बना सकती हो, और मैं जा रहा हूँ ऑफिस। कुछ जरूरत हो तो बाकी किसी से नहीं बोलना है, सीधा मम्मी को जाकर बोलना है, ठीक है? मुझे कुछ खास पसंद नहीं है मेरे फैमिली वाले, और तुम्हें भी मैं यही सलाह दूंगा कि उनसे थोड़ा बच के रहो। विहा ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर वेदांत के चेहरे को देखा। विहा को अपनी इस हरकत पर काफी एम्बैरेसमेंट फील हो रही था। उसके गाल पूरी तरह गुलाबी हो चुके थे। उसने धीरे से बस हाँ में सर हिलाया। उसके मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। पूरे दिन बकबक करने वाली लड़की वेदांत के छूने भर से बिल्कुल शांत पड़ चुकी थी, जिसे देखकर वेदांत ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, वैसे तुम्हें कुछ खास मेकअप की जरूरत नहीं है, तुम्हारे गाल तो पहले से ब्लश कर रहे हैं, एकदम पका हुआ टमाटर लग रही हो। विहा ने आंखें छोटी करके कहा, मैं कोई टमाटर नहीं हूँ। वेदांत ने हल्के से उसके सर पर मारते हुए कहा, पर तुम हो टमाटर। चलो टमाटर, अब बाद में मिलते हैं। इतना बोलकर वेदांत ने अपना फोन निकालकर उसमें टाइम देखा और फिर तेज कदमों से कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही विहा ने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखकर एक लंबी सांस भरते हुए कहा, आइंदा मैं कभी वेदांत जी को नहीं बोलूंगी कि किसी चीज में मेरी हेल्प करो। ऐसा लगता है उन्होंने कोई जादू किया था जिससे मैं बिल्कुल मौन हो चुकी थी, और मेरी इतनी लंबी जुबान है, वो चुप रहेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। सो बी केयरफुल विहा सहगल, वेदांत ने मानी, तुम्हारे आसपास ज्यादा नहीं आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अनाही जैसे ही अपने कमरे में गई, उसने धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांका, लेकिन अंदर कोई नहीं था। ये देखकर अनाही मायूस होते हुए बोली, क्या रोहान जी इतनी सुबह सुबह चले गए? मुझे माँ से ही अनाही अंदर आई और तैयार होने लगी। वहीं सेकंड फ्लोर पर राधिका और माधवी दोनों आपस में बातें कर रही थी इस मुंह दिखाई की रस्म के लिए। राधिका का इकलौता बेटा मनन इस शादी को अटेंड करने नहीं आया था, वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था। उसकी उम्र रोहान से 2 साल बड़ी थी। राधिका इस वक्त उसे ही बातें कर रही थी। मनन ने अपने सामने रख लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए कहा, मॉम आपको फैमिली मैटर अपने पास ही रखना चाहिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है रोहान और वेदांत भाई की शादी से। वैसे भी मुझे रोहान तो बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे देखकर ही मेरा मूड खराब हो जाता है। सो प्लीज आप भूल जाइए कि मैं उनकी शादी की रिसेप्शन पार्टी के लिए घर आऊंगा, और आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट होने वाली है, और उसके बाद तो मैं हमेशा के लिए आपके पास रहने आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना, अब मैं प्रेजेंटेशन रेडी कर रहा हूँ, बाय। फोन करते ही राधिका ने माधवी की तरफ देखते हुए कहा, जी जी इस रोज रोज की चिक चिक मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। उधर रितेश जी भी मुझ पर ही ब्लेम डालते हैं कि बेटे को मैंने ज्यादा बिगाड़ दिया है, इसीलिए वो घर होकर भी बाहर पढ़ने गया। माधवी ने अपने हाथ में पड़े नेकलेस के सेट को देखते हुए कहा, कहने दे उनको जो कहना है, मुझे मनन पर पूरा भरोसा है, वो बाहर जाकर भी कोई गलत कदम नहीं उठाने वाला है। फिर माधवी ने वो नेकलेस राधिका को दिखाते हुए कहा, ये मैंने बड़ी बहू के लिए डिसाइड किया है, रोहान तो हमारे कब्जे में है ही, मैं नहीं चाहती उसकी बीवी भी हमारे हाथों से दूर रहे, तो कोशिश है पहले दिन से ही शुरू कर देते हैं। रोहान का जिक्र सुनते ही राधिका ने कहा, रोहान को हम लोगों ने इतना अल्कोहलिक बना दिया है, इसकी वजह से मनन और अनंत दोनों ही रोहान से काफी नफरत करने लगे हैं। अपने बेटे अनंत का जिक्र सुनकर माधवी ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है हमें, वैसे भी रोहान को इस हद तक पागल बनाना है कि वो बिल्कुल 5 साल का बच्चा बन जाए, और उसके बाद उसे वो काम करवाएंगे जिनके लिए हम पिछले इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं। माधवी याद कर रही थी कैसे उसने 6 साल के रोहान को बहला फुसला कर अपना गुलाम बनाया था। अब रोहान को अपनी माँ से भी ज्यादा माधवी पर भरोसा था। उसकी तैसी उसके लिए किसी भगवान से काम नहीं था, जिसके लिए वो किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं सुन सकता था। राधिका ने भी अपने पास रखी एक साड़ी माधवी को दिखाते हुए कहा, मैंने तो दोनों के लिए ये साड़ी सिलेक्ट की है, उम्मीद करती हूँ उनको पसंद आएगी। वैसे भी वो मिडिल क्लास से हैं, उनके लिए हाईफाई साड़ी देखते ही खुश हो जाना नॉर्मल सी बात है, इसलिए मैं ज्यादा एफर्ट नहीं डालने वाली हूँ। माधवी ने राधिका की बात सुनकर हामी भरी और फिर विहा की हरकतें याद करते हुए बोली, छोटी वाली कुछ ज्यादा ही नक चढ़ी है, उसकी हरकतों से ही पता चल रहा था हमें उसकी खासकर ज्यादा ख्याल रखना होगा। वैसे भी वेदांत भी हमारी नहीं सुनता है। मैं नहीं चाहती छोटी वाली भी बागी बनाकर हमारे किए पर पानी फेर दे, राधिका ने उसकी बात समझते हुए कहा। मैं उसकी खास ख्याल रखेगी, बड़ी वाली तो मुझे उलझी हुई ही लग रही है। वो दोनों अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग बना ही थी तो वहीं हॉल में निवेदिता अपनी दोस्तों के बीच अपनी दोनों बहू के बारे में बातें कर रही थी। सुबह से लेकर कल शाम तक बहुत सारी ऐसी हरकतें की थी वेहा ने जो फिलहाल उन औरतों के बीच हंसने का एक अच्छा टॉपिक बन चुका था। निवेदिता की दोस्त ने हंसते हुए कहा, लगता है छोटी बहू के रूप में तुम्हारे घर में एक छोटा सा बच्चा आ गया है। अच्छी बात है, घर की रौनक बन जाएगी। फिर दूसरी औरत ने उसका साथ देते हुए कहा, वैसे भी इस घर के बच्चे तो वैसे ही अपनी उम्र से पहले बड़े हो गए थे। तुमने बच्चों वाली हरकतें ज्यादा अच्छी नहीं उनके अंदर। इसी बहाने तुम्हें पता भी चल जाएगा कि शैतान बच्चे आखिर होते कैसे हैं। ये सुनकर कहीं ना कहीं निवेदिता का चेहरा लटक गया। उसका वेदांत 11 साल का था और रोहान 6 साल का जब नमन की मौत हुई थी, और उसके बाद से ही वेदांत का बचपन तो जैसे एकदम से गायब हो गया था। तो वहीं निवेदिता भी अपना हाल इतना बुरा कर चुकी थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसे एक नन्ही सी जान का ख्याल भी रखना है। और 6 साल का रोहान भी धीरे धीरे अपना सारा बचपन भूल गया, और अगर उसने थोड़ा बहुत समय बिताया भी तो वो माधवी के साथ था, निवेदिता के साथ नहीं। निवेदिता बेसुध सी अपने कमरे में एक कोने में बैठकर बस नमन की तस्वीर को घूरती रहती थी या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती थी। इसके अलावा उसने कभी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जिसका खामियाजा वो अब भी भुगत रहा है। उसका रुहान उसे एक नज़र भर देखता तक नहीं है, जैसे वो उसकी माँ न होकर दुश्मन हो। रुहान के बारे में याद करते करते निवेदिता का गला भर आया था। ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि वो किसी भी पल रो पड़ेगी, कि तभी अचानक उसके कानों में विहा की प्यारी सी आवाज आई, सासू माँ, क्या ये वो आसन है जिसे हमें ग्रहण करना है? हॉल के साइड में बनी दो खूबसूरत चेयर की तरफ इशारा करते हुए विहा ने पूछा। उसके इन अजीब गरीब शब्दों को सुनकर वहाँ की औरतें एक साथ हंस पड़ी, तो वहीं निवेदिता ने भी अपना मूड सही करते हुए मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, यही बैठना है तुम दोनों को। फिर उन्होंने विहा के पीछे देखते हुए कहा, अभी तक अना ही नहीं आई बेटा। विहा अपने घूंघट को पकड़े उनमें से एक चेयर पर बैठते हुए बोली, हाँ बस दे आ ही रही होगी, उनके बाल ज्यादा लंबे है ना तो उनको ज्यादा वक्त लग जाता है। मेरे बाल तो बहुत ही घुंघराले हैं जिस वजह से मैं उनकी कोई हेयर स्टाइल ही नहीं बनाती हूँ, इस वजह से मुझे रेडी होने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है।
ये सुनकर निवेदिता ने मुस्कुरा कर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, घुंघराले बाल भी खूबसूरत लगते हैं, उनको ज्यादा स्टाइल करने की जरूरत नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ वेदांत अपने ऑफिस के चेयर पर बैठा था कि अचानक उसका फोन बज उठा, और ये एक वीडियो कॉल था। वेदांत ने जैसे ही कॉल उठाया, सामने का नज़ारा देखते ही वो घबरा कर अपनी चेयर से उठते हुए बोला, रुहान,